आयोजित किए जाने वाले इस 7 दिवसीय भागवत कथा के अंतिम दिवस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है श्री श्री राधा रासबिहारी मंदिर में। प्रसंग पिछले 6 दिनों से ये चल रहा है कि विदुर जी तीर्थ यात्रा में निकल पड़े हैं। दुर्योधन ने बहुत कटु वचन कहे उनसे और बाहर निकलवाया उनको हस्तिनापुर से। विदुर जी समझ गए कि ये भगवान की योजना है और ये उनके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। भगवान के शरण को ग्रहण करने के लिए भगवान ने बहुत ही बढ़िया एक उपाय बनाया, ऐसा समझ के विदुर जी तीर्थ यात्रा में चल पड़े। तीर्थ यात्रा के दौरान उन्होंने यदुवंशियों के विनाश की खबर सुनी और अंततः व्रज भूमि व्रज मंडल में पहुंचे। यमुना के तट पे उन्होंने उद्धव का दर्शन किया, जो कि बहुत ही प्रेमी भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के, मथुरा और द्वारका से। विदुर जी ने अनेक प्रश्न किए उद्धव जी से, यदुवंशियों के बारे में, कुरुवंशियों के बारे में, क्योंकि विदुर जी तो अनेक वर्षों से तीर्थ यात्रा में निकले हुए थे और उनको कोई खबर नहीं थी कि द्वारका में क्या हो रहा है, हस्तिनापुर में क्या हो रहा है। तो जब ये सारे प्रश्न सुने उद्धव ने, भाव विभोर हो गए, कृष्ण का स्मरण हुआ और थोड़ी देर के लिए विरह की भावना उनके हृदय में इतनी तीव्र हो गई कि वो कुछ भी कह नहीं पाए। अंततः सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इतनी बेचैनी उनको हुई, परंतु विदुर जी के प्रश्नों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करके उनके हृदय की जो व्याकुलता थी, जो बेचैनी थी, वो कम हो गई। सुखदेव गोस्वामी उद्धव के बचपन की बात करते हैं कि कैसे अपने बाल्यावस्था में भी वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा कितने प्रेम से, कितने लगन से, कितने निष्ठा से करते थे। छोटे छोटे पुतलियां, गुड़िया ऐसे बनाते थे भगवान कृष्ण के, और अपने ही जैसे बच्चे खेलते हैं, उन्होंने भी अपने अर्पण पूजा के लिए अर्पण करने के सामग्री आदि सब बनाए थे। बड़ों को देखा होगा कि बड़े लोग कैसे पूजा आदि करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे नकली सामग्री बनाए पूजा के लिए और श्री कृष्ण की पूजा करते रहे। जब माता उनको बुलाने आए कि चलो भोजन का समय हुआ है, तो वो नहीं गए क्योंकि पूजा विधि समाप्त हुई नहीं थी। आगे सुखदेव जी कहते हैं, इस तरह उद्धव बाल्यावस्था से ही वृद्धावस्था तक भक्ति बड़े सुदृढ़ रूप से निष्ठापूर्वक करते रहे, और ऐसे नहीं है कि जब उनकी आयु बढ़ गई तो उनके सेवा में कोई घटन हुई या उनके भाव में कोई शिथिलता हुई, ऐसे नहीं हुआ। जैसे कि कल हम चर्चा कर रहे थे, श्रीमद् भागवत में कहा गया है 10वें स्कंध में कि भगवान के पार्षद होने के कारण, भगवान की तीव्र भक्ति करने के कारण द्वारका के निवासी वृद्ध होने पर भी वृद्ध की तरह नहीं प्रतीत होते थे, तरुणों की तरह दिखाई पड़ते थे। तो उद्धव की भी ऐसी ही परिस्थिति थी। जब बुढ़ापा आ गया, बूढ़े की तरह दिख तो नहीं रहे थे, फिर भी आयु तो लगभग 125 वर्ष की हुई, फिर भी उतने ही उत्साह से वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में रत रहे। बल्कि जैसे जैसे भक्त निष्ठा पूर्वक सेवा करते रहता है अपने जीवन में, उसकी श्रद्धा बढ़ जाती है, वो भक्ति में परिपक्व हो जाता है। तो उद्धव जी के साथ ऐसे ही हुआ। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के बारे में उन्होंने प्रश्न सुने, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करना शुरू किया। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं कि साधारणतः भौतिक जगत में व्यक्ति अपने भौतिक कार्यों से निवृत्त हो जाता है। अलग अलग स्थानों में अलग अलग आयु होती है। लगभग 60 साल की आयु में कार्य निवृत्त होकर वो अपने नौकरी या व्यवसाय को छोड़ देता है और आराम करता है। परंतु भक्ति में ऐसे कोई निवृत्त होने की कोई योजना नहीं है। बचपन से लेकर ही अंत तक, अंतिम क्षण तक भक्ति हमारी जारी रहनी चाहिए। बल्कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जैसे आयु बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम शरीर के व्याधियों का अनुभव करने लगते हैं और समझने लगते हैं कि ये शरीर का की सही पहचान क्या है, शरीरम व्याधि मंदिरम, उस समय हमें और भी तीव्रता से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगना चाहिए। शारीरिक भावना बढ़ाने के बजाय शारीरिक भावना कम करने का प्रयास करना चाहिए। अपने समय को पूरी तरह से भगवान कृष्ण की सेवा में लगाकर, कालम नैद अखिलम इत्युपदेश सारम। रूप गोस्वामी कहते हैं कि हमारा सारा समय अखिल, हमारा सारा समय भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए हमें बिताने का प्रयास करना चाहिए। तो यहां ऐसे कोई आराम का जीवन नहीं है, भक्ति ही आराम है। क्योंकि भगवान की सेवा करते करते इतने आनंद का अनुभव होता है कि ऐसे मन नहीं करता है कि अभी हम बूढ़े हो गए हैं, अभी भगवान का दर्शन नहीं करेंगे, अभी हम कीर्तन नहीं करेंगे, जप नहीं करेंगे। बल्कि जैसे जैसे हम भक्ति करते रहते हैं, वैसे वैसे परिपक्वता बढ़ती है, रस बढ़ता है। तो यदि हम अनेक वर्षों से भक्ति कर रहे हैं और हमारी आतुरता, हमारा उत्साह नहीं बढ़ रहा है, तो ये भक्ति का दोष नहीं है, नहीं भगवान का दोष है। इसका मतलब है कि हम कुछ तो ठीक से नहीं कर रहे हैं। हो सकता है हमारी साधना में हम कमजोर हैं, हो सकता है नियमों का पालन ठीक से हम नहीं कर रहे हों, श्रवण ठीक से नहीं कर रहे हों, संग नहीं कर रहे हों। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन के अंतिम क्षण तक व्यक्ति को चाहिए कि भगवान की भक्ति करे और कभी छोड़े नहीं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जब विदुर जी ने अपने प्रश्न पूछे और रुक गए, तो फिर क्या हुआ? स मुहूर्तम अभूत तूष्णीम कृष्णांघ्रि सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन निमग्न साधु निर्वृतः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सह मतलब वो उद्धव जी, मुहूर्तम अभूत तूष्णीम, तूष्णीम अर्थात बिल्कुल चुप हो गए, अभूत मतलब बन गए। कितने समय के लिए? मुहूर्तम, साधारण भाषा में एक मुहूर्त का मतलब है एक क्षण, परंतु मुहूर्त का मतलब 48 मिनट भी होता है। आप जानते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? वो समय जो सूर्योदय के 2 मुहूर्त पहले प्रारंभ होता है, अर्थात एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो 2 मुहूर्त जो है 1 घंटे 36 मिनट का होता है। तो सूर्योदय के पहले 1 घंटे 36 मिनट से ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रारंभ होता है। आध्यात्मिक जीवन के लिए, भगवान की सेवा के लिए ये बहुत ही अनुकूल समय माना जाता है। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि हम प्रातः काल में उठें और भगवान की सेवा में लग जाएं। तो खैर यहां 48 मिनट तक लगभग, ऐसे घड़ी देखकर तो नहीं कह रहे हैं कि 48 मिनट तक वो चुप रहे, लगभग अनुमान लगा रहे हैं कि काफी लंबे समय तक उद्धव जी केवल भाव विभोर होकर चुप रह गए, कुछ बोल नहीं पाए। क्यों नहीं बोल पाए? पहली बात तो ये है कि उनका मन विचलित हो गया था भगवान श्री कृष्ण के विरह में। लेकिन अब भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण जब पुनः हुआ उनको, तब साधु निर्वृतः, साधु अर्थात यहां वो कुछ शांत हो गए, उनकी बेचैनी कम हो गई। निर्वृतः मतलब पूरी तरह से आनंद से उनका हृदय भर गया। तो ये परिवर्तन क्यों हो गया? कृष्णांघ्रि सुधया भृशम तीव्रेण भक्ति योगेन, भक्ति योगेन अर्थात उनके कृष्ण प्रेम के द्वारा, जो कि विरह के कारण बहुत तीव्रता से वो कर रहे थे। भृशम अभी वो परिपक्व हो गया था, तो वो उस अमृत का स्वाद, सुधा उस अमृत का स्वाद ले रहे थे। कौन से अमृत का स्वाद? कृष्णांघ्रि, श्री कृष्ण के अंघ्रि, अंग्र अर्थात उनके चरण कमलों का, कृष्णांघ्रि सुधा, इसका स्वाद लेने लगे। तो ऐसे भक्ति शास्त्रों में, श्रीमद् भागवत में विशेष रूप से अनेकों बार ऐसे वर्णन आता है कि भगवान के भक्त भौरों के समान होते हैं, मधुमक्खियों के समान। भौरे या मधुमक्खियां हैं वो कहाँ रहते हैं? सदैव वो ऐसे पुष्पों के संग में रहते हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार का अमृत है। तो कहीं एक पुष्प के ऊपर जाएंगे, वहां से कुछ अमृत का पान करेंगे, दूसरे पुष्प में जाएंगे, वहां से कुछ अमृत का पान करेंगे। ऐसे सुंदर रमणीय स्थानों में भ्रमण करते रहते हैं ऐसे भंवरे। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की तुलना भी ऐसे भंवरों से की गई है। तो कौन से शहद के पीछे वो यहां वहां मंडराते रहते हैं? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के शहद के पीछे। तो भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मधु या शहद के बराबर है, बहुत मीठे हैं और हमेशा वही रहते हैं, घूमते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेना, उनके चरण कमलों को हृदय में स्थापित करना, यही भक्तों की अभिलाषा होती है। इतने आसक्त होते हैं भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से, और इतना आनंद उनको मिलता है इस कार्य में कि भगवान भी स्वयं समझ नहीं पाते हैं कि मेरे चरण कमलों में ऐसी क्या जादू है, ऐसी क्या अद्भुत बात है जो कि मेरे भक्त इस तरह से सदैव मेरे चरण कमलों में मंडराते रहते हैं। मुझे भी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, मुझे भी अनुभव प्राप्त करना चाहिए। देखिए ये भक्ति की खूबी है। भक्ति के संबंध में भगवान और भक्त दोनों को आनंद का अनुभव होता है, परंतु रहस्यमय बात यह है कि भगवान के भक्तों को अधिक आनंद प्राप्त होता है। और इसलिए भगवान जानना चाहते हैं कि ऐसी क्या चीज है मुझ में और विशेष रूप से मेरे चरण कमलों में कि मेरे भक्तों को उनकी सेवा करके इतना आनंद आता है। मात्र उनका स्मरण करने से दिव्य उल्लास का अनुभव उनको हो रहा है, तो मुझे भी इस रस का आस्वादन करना है। अब देखिए कैसे कर सकते हैं भगवान। तो भगवान ने सृष्टि के प्रलय के समय एक ऐसे बाल रूप धारण किया जो कि वट वृक्ष के पत्र के ऊपर शयन कर रहा था। संक्षेप में इस बात की चर्चा थोड़े दिन पहले हम कर रहे थे। बाल मुकुंदाष्टकम नाम के सुंदर कविता में ये प्रसिद्ध श्लोक है, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये कवि ने कहा है, वो स्मरण कर रहे हैं उस बाल मुकुंद का, बाल कृष्ण का, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, जो शयन कर रहे हैं एक वट वृक्ष के पत्र के ऊपर जो जल में तैर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, करार विंदेन, अपने कर कमलों से, पदार विंदम, अपने उन्होंने चरण कमलों को पकड़ा है, और मुखार विंदे विनिवेश यंतम, अपने मुखार विंद में अपने अंगूठे को, चरण कमलों को अंदर उन्होंने वो अपने मुखारविंद के अंदर लिया है। तो ऐसे दृश्य का दर्शन हमें करा रहे हैं कवि। तो ये चित्र आपने अवश्य देखा होगा कहीं, तो बहुत प्रसिद्ध चित्र है ये। तो ऐसे भगवान क्यों करते हैं, वैसे इसके पीछे रहस्य ये है कि भगवान चाहते हैं कि वो उनके चरण कमलों के रस का आस्वादन करे। अब देखिए, कोई बड़ा व्यक्ति अपने ही अंगूठे को चूसने जाए तो लोग उसे पागल कहेंगे ना। बड़ा व्यक्ति तो ऐसे कभी नहीं करता है। पहले तो ऐसे शरीर को इस तरह से मोड़ना मुश्किल है, अगर आप योगी हैं तो कर पाएंगे, नहीं तो अन्यथा नहीं संभव है। परंतु कोई बड़ा व्यक्ति तो ऐसे कभी करेगा नहीं, बच्चा ही करता है, बालक, वो भी शिशु करते हैं ऐसे। तो भगवान ने ऐसे शिशु रूप धारण किया और अपने ही अंगूठे को चूसने लगे। बच्चे आखिर अक्सर ऐसे करते हैं, अपने अंगूठे को, अपने उंगलियों को चूसते रहते हैं। तो इसके पीछे रहस्य ये है कि भगवान जानना चाहते हैं कि मेरे चरण कमलों में वो क्या स्वाद है जिसके पीछे सारे भक्त यहां वहां भ्रमण कर रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के इन चरण कमलों का स्मरण करके उद्धव जी सचेतन हो गए, पुनः मूर्छित हो गए, एक दो बार गिर पड़े थे। फिर से उद्धव जी के उच्च स्वर में प्रश्न करने के कारण सचेत हो गए और फिर भगवान के चरण कमलों का स्मरण उन्होंने किया और तब उनके हृदय में बेचैनी बिल्कुल मिट गई, क्योंकि भगवान की उपस्थिति उनके हृदय में थी। श्रील प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में कहते हैं एक महत्वपूर्ण बात, क्योंकि भगवान परम हैं और परम स्तर पर सदैव स्थित हैं, भौतिक जगत से स्पर्श नहीं करते हैं, इस जगत के द्वंद्वों से परे सदैव रहते हैं, गुणातीत हैं वो, इसलिए भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में और भगवान श्री कृष्ण की निजी उपस्थिति में कोई अंतर नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे होते हैं भक्ति भाव से, एकाग्र चित्त से, तो हमें जानना है कि भगवान श्री कृष्ण हमारे हृदय में, हमारे चित्त में उपस्थित हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, भगवान अपने आप को कहीं भी प्रकट करा सकते हैं, किसी भी पदार्थ के माध्यम से अपने आप को प्रकट करा सकते हैं, तो हमारे चित्त में क्यों नहीं। श्रीमद् भागवत में ऐसे बताया गया है कि भगवान की श्री मूर्ति या श्री अर्चा विग्रह अनेक पदार्थों से बनी जा सकती है, जैसे कि मिट्टी, धातु, पत्थर और रंग और रत्न इत्यादि। और एक बात है कि मन में भी जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो वो भी एक विग्रह हो जाता है भगवान का। जिस प्रकार से हम यहां मंदिर में श्री श्री राधा रास बिहारी जी का दर्शन करते हैं, पत्थर के पदार्थों में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं और वो भगवान श्री कृष्ण से बिल्कुल अभिन्न है, ठीक उसी प्रकार से जब हम राधा रास बिहारी का स्मरण हमारे मन में करते हैं तो हमें जानना चाहिए कि वो भी अर्चा विग्रह हैं, भगवान हमारे चित्त में प्रकट हुए हैं, तो भगवान हमारे साथ में हैं। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण करते हैं तो श्री कृष्ण हमारे जीभ पर, हमारे जिह्वा पर उपस्थित हैं। तो इसीलिए उद्धव जब श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण कर रहे थे तो बहुत ही तीव्रता से उनको श्री कृष्ण के सानिध्य का अनुभव हुआ। फिर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पुलकोद भिन्न सर्वांगो मुंचन मील दृशा शुचः पूर्णार्थो लक्षितस्तेन स्नेह प्रसर संप्लुतः। लक्षितः तेन, तेन मतलब उन्होंने विदुर जी ने लक्षितः देखा, क्या देखा, उद्धव के शरीर में क्या परिवर्तन हो रहा था वो विदुर जी ने देखा। तो क्या परिवर्तन हो रहा दिखाई पड़ रहे थे, पुलक उद्भिन्न सर्व अंग, तो उनके शरीर के हर एक अंग में पुलक आदि ऐसे सात्विक अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो रहे थे, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना इत्यादि। श्रील रूप गोस्वामी ने इस विषय पर काफी विस्तार में व्याख्या की है अपने भक्ति रसामृत सिंधु नाम के ग्रंथ में। ये काफी ऊंचा विषय है वास्तव में, परंतु जो व्यक्ति भाव भक्ति या उसके ऊंचे ऊपर के स्तर को प्राप्त करता है तो ऐसे व्यक्ति के शरीर में ऐसे विकार या ऐसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। कंठ गदगद वाक्यों से रुद्ध हो जाता है, आंखों से अश्रुधारा बहने लगती है, ऐसे कई लक्षण होते हैं और विदुर जी पहचान गए देखकर इनको, ये सारे लक्षणों को देखे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आंसू वो पोंछ रहे थे। और उद्धव जी ने पूरी तरह से कृष्ण प्रेम का अनुभव किया है और कर रहे हैं वो जान गए। उनका हृदय संप्लुतः पूरी तरह से इनका अनुभव हो रहा है, स्नेह प्रसर बहुत ही गाढ़ प्रेम का अनुभव वो अपने हृदय में कर रहे हैं, अन्यथा ऐसे लक्षण संभव नहीं है। तो इस श्लोक में उद्धव जी के दिव्य आनंद के लक्षणों का वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। हमें याद रखना है कि जिन लक्षणों का वर्णन यहां पे हम पढ़ रहे हैं ये कोई साधारण भौतिक भावुकता से उत्पन्न होने वाले कोई लक्षण नहीं है। जहां तक आंखों से आंसू आने की बात है, ये तो साधारणतः लोगों में आती है, दुनिया में कोई दुख हो गया कभी खुशी के मारे भी आंसू आते हैं, तो ऐसे ये संसार के आंसू नहीं है। इस तरह के जो भावपूर्ण शारीरिक विकार दिखाई पड़े विदुर जी उद्धव जी के शरीर में, ये कोई कृत्रिम अभिव्यक्तियां नहीं हैं जो कि अभ्यास के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं किसी को। कोई व्यक्ति कहे दूसरे व्यक्ति को देखे कि इसके शरीर के अंदर ऐसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो मैं भी कांपने की नकल करूंगा, मैं भी ऐसे करूंगा, नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे अभ्यास करके ये सारे लक्षणों को हम प्राप्त, इनका अनुशीलन नहीं कर सकते हैं। एक बार हुआ ये कि हरिदास ठाकुर जो नामाचार्य हैं, नामाचार की पदवी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी थी, क्योंकि वो सतत कृष्ण नाम लिया करते थे। एक बार वो कहीं जा रहे थे तो कोई व्यक्ति एक वाद्य बजा रहा था और उसके सामने एक सांप था और सांप भी ऐसे झूम रहा था संगीत के अनुसार, और वो गीत भी गा रहा था बाद में किस प्रकार से श्री कृष्ण ने वृंदावन में कालिये का दमन किया। तो जब ये गीत सुना हरिदास ठाकुर ने तो भाव विभोर होकर प्रेमावेश में गिर पड़े जमीन के ऊपर, और ये सारे लक्षण जो हैं भाव के, जिनका संक्षेप में उल्लेख सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं उद्धव जी के संदर्भ में, वो हरिदास ठाकुर जी के शरीर में दिखाई पड़े और वहां जितने उपस्थित लोग थे सारे लोग समझ गए कि ये बहुत महान भक्त हैं। सब उनको प्रणाम करने लगे, उनका आदर सत्कार करने लगे, प्रशंसा करने लगे। तो एक व्यक्ति वहां था, उसने सोचा बहुत अच्छी बात है, इस तरह से बर्ताव करने से सब हमारे चरण छुएंगे और हमारी वाहवाह करेंगे, प्रशंसा करेंगे, तो मैं भी ऐसे करता हूं। तो उसने भी ऐसे नकल करने, ऐसे अपने शरीर में कंपन आदि लाने की नकल की। तो वो जो गीत गाने वाला व्यक्ति था, वो अपने हाथ में उसकी लाठी थी, लाठी लेकर उसे खूब पीटने लगा। तो वो व्यक्ति चिल्लाने लगा, भाई क्यों पीट रहे हो मुझे? उसने कहा, तुम क्यों ऐसे कार्य कर रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई वो जब कर रहे थे तो आप उनकी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मैं जब कर रहा हूं तो मुझे आप पीट रहे हो। कहा, वो असली है, तुम नकली कर रहे हो, इसलिए तुम्हें पीटना चाहिए, क्योंकि तुम समाज में आके अपने आप को बहुत बड़े भक्त के रूप में घोषित करना चाहते हो ना, तो ऐसे ढोंग नहीं करना। तो खैर, ऐसी चीजें भौतिक नहीं है, ये बहुत ही भक्ति के ऊंचे स्तर से ही उत्पन्न होते हैं स्वाभाविक रूप से। और एक शुद्ध भक्त ही दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान सकता है, अन्यथा इन चीजों को जानना इतना आसान नहीं है। कौन शुद्ध भक्त है, कौन नहीं है, जब तक हम नहीं जानेंगे भली भांति भक्ति के सूक्ष्म तत्वों से हम परिचित नहीं होंगे, हम कैसे जान पाएंगे कि कोई प्रामाणिक भक्त है या नहीं है, ढोंगी है नहीं है। तो विदुर जी तो एक प्रामाणिक महाभागवत थे, तो वो अच्छी तरह से पहचान गए कि उद्धव का स्तर कितना ऊंचा है। प्रभुपाद जी यहां तात्पर्य में भक्ति के क्रमशः प्रगति में 9 स्तर जो आते हैं उनका उल्लेख भी करते हैं, परंतु अब हमारे पास यहां समय नहीं है इसकी चर्चा करने के लिए। आदौ श्रद्धा, बहुत ही अल्प श्रद्धा से प्रारंभ होकर धीरे धीरे से प्रेमा भक्ति की अवस्था को प्राप्त करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, शनकैर भगवल्लोकान नृलोकम पुनरागतः विमृज्य नेत्रे विदुरम प्रीत्या होद्धव उत्स्मयन। शनकै ही मतलब शनै शनै, धीरे धीरे से क्रमशः भगवत लोकान, भगवान के लोक से, भगवान के धाम से, नृलोकम अर्थात इस पृथ्वी लोक पर, नृ अर्थात मनुष्य, इस मनुष्यों के लोक पर पुनः आगतः, फिर से वो आ गए। कौन आ गए? उद्धव जी। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि धीरे धीरे से उद्धव जी भगवान के धाम से पृथ्वी लोक पर आ गए। विमृज्य नेत्रे, फिर अपने आंखों को पोछने लगे। प्रीत्या, आह, और फिर बहुत ही भक्ति भाव से, बहुत ही प्रेम से कहने लगे, विदुर जी से बात करने लगे, ऐसे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ऐसे यहां कहा गया है कि उद्धव भगवान के धाम से पृथ्वी पर लौट के आए, ये कैसे हो सकता है? वो तो विदुर जी के सामने ही तो खड़े थे ना, तो कैसे कहा जा सकता है कि भगवान के धाम से वो यहां पर पृथ्वी पर फिर से लौट के आ गए? देखिए, हमारे दैनिक जीवन में भी हम सबका अनुभव कभी न कभी किसी न किसी के साथ तो कभी हुआ होगा कि हम किसी से बात कर रहे हैं जो हमारे सामने बैठा हुआ है, परंतु हम देख रहे हैं कि उसका ध्यान कहीं और है। वह हमारे सामने बैठा है, बातचीत कर रहा है, परंतु उसकी आंखों से वगैरह, उसके शरीर से हम जान सकते हैं कि मन कहीं और है उसका। तो हम उसे कहते हैं, भाई कहां हो तुम? हम केवल शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसका शरीर तो हमारे सामने ही है। हम कह रहे हैं, कहना चाहते हैं कम से कम उस व्यक्ति से कि तुम्हारा मन कहाँ है, मन कहाँ यहां वहां दौड़ रहा है, किस चीज का स्मरण कर रहे हो इस समय। तुम मुझसे बात कर रहे हो तो वार्तालाप में ध्यान दो, वार्तालाप में ध्यान देने के बजाय मन तुम्हारा कहीं यहां वहां हट गया है। तो फिर से वो व्यक्ति, उस व्यक्ति के मन को हम खींच के लाते हैं उस वार्तालाप में। कथा के समय तो हम बार बार ऐसे ही अनुभव करते हैं, देखते हैं ना सबके चेहरों को, मन तो भटकते रहता है ना। तो इस तरह से थोड़ी देर के लिए वो रहता है जहां जो हम सुन रहे हैं, फिर मन कहीं भटक जाता है, फिर से मन को खींचना पड़ता है, फिर मन कहीं भटक जाता है। चंचल मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरेव सुदुष्करम। अर्जुन भी श्री कृष्ण से कहते हैं ना कि मन बड़ा चंचल है, सुदृढ़ है, प्रबल है, जिद्दी है, इसको वश में करना तूफान को वश में करने से भी अधिक कठिन है। तो साधारण वार्तालाप में भी ऐसे देखते हैं कि शरीर एक जगह होने पर भी कभी कभी मन कहीं दूसरी ओर रहता है। तो उसी प्रकार से चाहे किसी व्यक्ति का शरीर कहीं भी क्यों ना हो, चाहे वो इस पृथ्वी लोक पर हो, स्वर्ग लोक में हो, कहीं भी क्यों ना हो, यदि वो व्यक्ति भगवान का स्मरण कर रहा हो भक्ति भाव से, तो वो भगवान के धाम में स्थित है, भगवत लोक में स्थित है। भगवान का धाम वैकुंठ गोलोक वृंदावन अवश्य है, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। और उसी भगवत धाम को भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट करवाया है धरातल पे। जो धाम होते हैं वो परव्योम धाम से अभिन्न होते हैं। परव्योम अर्थात आध्यात्मिक आकाश में स्थित होने वाले जो धाम है भगवान के, उनसे अभिन्न है। परंतु उन दोनों में भेद करने के लिए हम कहते हैं ये भौम वृंदावन है, भूमि पर जो प्रकट होने वाला वृंदावन है, और वो है परव्योम वृंदावन या अप्रकट वृंदावन। तो अभी जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वो वृंदावन में स्थित है। इसका तात्पर्य यह है कि वृंदावन न केवल एक स्थान है, परंतु ये एक चेतना का स्तर भी है। चेतना का स्तर होने का मतलब ये है कि जब हम श्री कृष्ण भावना भावित रहते हैं, हमारी चेतना कृष्णमय हो जाती है, तो हम भगवत धाम में स्थित हैं। अब हमें चयन करना है कि हमें कौन से धाम में रहना है, हमें पृथ्वी लोक में रहना है या हमें भगवान के धाम में रहना है। और ऐसा नहीं है कि केवल मृत्यु के बाद में हम भगवान के धाम में जाएंगे। जो शुद्ध भक्त बन जाते हैं मृत्यु के बाद तो पहुंच जाते हैं भगवान के पास। भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं ना, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नात्यस्त्र संशयः। जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता है अर्जुन, उसे भौतिक जगत में पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो मुझ भगवान को, मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो शुद्ध भक्त वैसे भी मृत्यु के बाद भगवान के पास जाएगा, उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ेगा। परंतु मृत्यु तक कहां रहेगा वो शुद्ध भक्त? ये शरीर तो है, ये भौतिक शरीर है, और पृथ्वी लोक पर वो है। तो शास्त्रों का निष्कर्ष ये है कि भौतिक शरीर धारण करते हुए भी कोई यदि व्यक्ति भगवान कृष्ण के स्मरण आदि में रत रहता है सदैव, तो वो जीते जी भी मुक्त व्यक्ति है। यहां यस्य हरेर दास्य कर्मणा मनसा गिरा निखिलाश्वप्यवस्थासु जीवन मुक्त स उच्यते। तो जो व्यक्ति हरि का दास है, कृष्ण की सेवा करता है, कर्मणा मनसा गिरा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा, तो वो जीवन मुक्त कहलाता है। तो जीवन मुक्त व्यक्ति भगवान के धाम में रहता है, भले वो पृथ्वी लोक में क्यों नहीं हो। शारीरिक रूप से पृथ्वी लोक में वो व्यक्ति भले हो, परंतु उसका अंतःकरण भगवान के धाम में है। और भगवान के भक्त भगवान के धाम में रहना पसंद करते हैं। हाँ, अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण करने के लिए अनेकों बार पृथ्वी लोक पर लौट के आना पड़ता है, और जब भगवान की बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, जैसे विदुर और उद्धव जी के बीच में अब हो रहा है, उस समय भी लौट के आना पड़ता है। परंतु लौट के भी विषय कृष्ण का है, इसलिए वो चर्चा के दौरान भी वो दोनों श्रोता और वक्ता भगवान के धाम में ही स्थित हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित, इन दोनों का शरीर अवश्य पृथ्वी लोक पर था, परंतु वास्तव में थे भगवान के लोक में, भगवत धाम में। तो हमें चयन करना है कि हमें कहां रहना है, कहां निवास करना है। श्रीमद् भागवत में नारद जी कहते हैं व्यासदेव जी से, अपने शिष्य से, नयत वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणीत करहि चित तद वाय संतीर्थ मुशंति मानसा न यत्र हंसा निरमंत्यु शिक्षया। वो कहते हैं कि हे मुनिवर व्यास जी, देखिए वचह जो शब्द चित्र पदम, भले वो कितने भी आकर्षक ढंग से क्यों न कहे हों, कहे गए हों, यदि वो श्री हरि का गुणगान नहीं करते हों, वो श्री हरि जो कि सारे जगत को पवित्र कराने वाले हैं, जगत पवित्रम, तो ये ऐसे वचह यदि प्रगृणीत वर्णन नहीं करते हैं कर्हिचित, कभी भी न कर्हिचित नहीं करते हैं, तो फिर ऐसे वचनों को क्या माना जाता है। उशंति मानसा, मानसा अर्थात जो संत लोग हैं, तो उशंति मतलब मानना, तो ऐसे संत लोग क्या बोल, क्या बात करते हैं या क्या मानते हैं ऐसे वचनों को, ऐसे वाक्यों को। वायसम तीर्थम, वायस है अर्थात कौवा, कौवा का, कौवे का जो तीर्थ स्थान है। अभी तीर्थ के बारे में काफी चर्चा पिछले कई दिनों से चल रही है, तीर्थ स्थान क्या होता है, भगवान कैसे तीर्थ कीर्ति के नाम से जाने जाते हैं, तीर्थ पद के नाम से जाने जाते हैं, अब ये कहां से आ गया कौवे का तीर्थ स्थान। जैसे मन समझ लीजिए दूध में किसी ने नमक डाल दिया, अचानक ये कहां से आ गया। तो ये कह रहे हैं संत लोगों का मत ये है कि जो वचन, चाहे वो लिखित रूप में हो, बोली में हो, यदि वो वचन श्री कृष्ण का गुणगान नहीं करते हैं, तो ऐसे जगह में नहीं जाना चाहिए, अर्थात ऐसे विषयों को सुनना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। कौवे और हंस में अंतर है बड़ा। अभिन्नता यह है कि दोनों पक्षी हैं, पंछी हैं, पंछी होते हुए भी अंतर बहुत है। देखिए सृष्टि के भीतर अनेक वर्गों में भी तारतम्य होता है, जैसे मनुष्यों में भी तारतम्य होता है, किसी की चेतना ऊंची होती है, किसी की निम्न श्रेणी की होती है, तो पशुओं में भी स्वभाव, उनके जो लक्षण होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। तो कौवे और हंस में अंतर बहुत होता है। कौवा जो होता है वो गंदगी में जाके रमण करना पसंद करता है। यदि एक कोई सुंदर बगीचा हो, बहुत सुगंधित फूल, फूलों से सुशोभित एक उद्यान हो, लेकिन उस उद्यान के बगीचे के कोने में कोई कीचड़ पड़ा है, गंदगी पड़ी है, तो जो कौवा होता है अपने स्वभाव से बद्ध होकर उसी गंदगी में जाएगा, वहीं पे कुछ न कुछ करता रहेगा। इतना सुंदर बगीचा है, वहां इन सुंदर सुगंधित फूलों के पास न जाकर वो गंदगी में जाता है। तो यहां तुलना या उपमा दी जा रही है विषयों के बारे में, बोलने के विषय, सुनने के विषय, तो जो विषय भगवान के गुणगान के संबंध में होते हैं वो उस सुंदर बगीचे के समान होते हैं, परंतु जो विषय भगवान से संबंधित नहीं है, केवल संसार के विषय के बारे में बार बार बोले जाते हैं, वो उस गंदगी के समान है जहां कौवे जाते हैं। तो जो लोग भगवान की कथा में, शास्त्रों में, भगवान की लीलाओं में, उनके संदेश में रमण नहीं करते, रुचि नहीं रखते, तो उनको ऐसे उपमा दी गई है उनके बारे में, जो ऐसे जो बातें हैं, ऐसे जो ग्रंथ हैं, चर्चाएं हैं, उनको वायस तीर्थ कहा गया है। कई कठोर शब्दों का प्रयोग कभी कभी शास्त्रों में होता है, परंतु कभी कभी ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है ताकि हम ठीक से बात को समझ सके। कौवे से विपरीत है हंस। हंस वो पक्षी होता है जो कि बहुत रमणीय स्थान में रहता है, जैसे कोई सरोवर हो जिसमें कमल पुष्प खिल रहे हो और वहां पे मधुर पवन बह रहा हो, प्राकृतिक सौंदर्य बहुत वहां दिखाई पड़ रहा है, तो हंस जो है वहां ऐसे जल में, ऐसे सरोवर में जाके तैरते हैं। उनके बर्ताव को देखिए, बड़े शांत स्वभाव के लगते हैं। कौवे देखिए, सदैव कौ कौ करते रहते हैं, विचलित दिखाई पड़ते हैं, स्वभाव में अंतर है। तो संतों को भी हंस कहते हैं, हंस या परमहंस भी कहते हैं। वैसे बताया जाता है कि हंस की एक विशेष विशेषता ये है कि दूध और जल के मिश्रण से वो दूध को निकाल सकता है। आजकल तो बहुत आवश्यक है, ऐसे कोई कला किसी को मिल जाए। आजकल शुद्ध दूध का ही मिलना बहुत मुश्किल है, इतने मिलावट के जमाने में हम रहते हैं, हर चीज में मिलावट है। यदि हम लोग भक्त बन जाएं तो ठीक है, फिर अपनी गौशाला बनाए रखें, अपने शुद्ध दूध गाय से लें, गाय की रक्षा करें, ठीक, वो अलग बात है। तो तात्पर्य ये है कि साधुओं को, संतों को हंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि भौतिक जगत की परीक्षा जब वो करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो भौतिक जगत से केवल उन्हीं चीजों को वो चुनते हैं जो कि भगवान से संबंधित हैं, जिनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्त वैराग्य मुच्यते। तो युक्त वैराग्य, सही वैराग्य वो है जिसमें हम संसार के वस्तुओं को नकारते नहीं है, परंतु उन वस्तुओं को स्वीकार करते हैं जिनका उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। जैसे ये अभी उपकरण है, इनका प्रयोग हम कर रहे हैं श्री कृष्ण कथा करने के लिए। यहाँ बिजली है तो बिजली का प्रयोग भी हो रहा है भगवान की सेवा के लिए, परंतु यही बिजली और यही सारे उपकरण किसी अन्य भौतिक कार्य के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो भक्त वो होते हैं जो जानते हैं कि किस चीज का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए और किया जा सकता है। तो इसलिए साधुओं को, संतों को हंस कहते हैं। तो इस कौवे के तीर्थ स्थान के संबंध में बताया जाता है, न यत्र हंसा, कि ऐसे वायस तीर्थों में, अर्थात ऐसे भौतिक वचनों में जो हंस होते हैं, जो भक्त होते हैं, कभी भी रमण नहीं करते हैं, वे ऐसी बातों को सुनना नहीं चाहते, बोलना नहीं चाहते। तो भक्तों के समाज में भी हमें इस बारे में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जो वाचो वेग है, वाचो वेगम, ये जो बोलने की प्रवृत्ति है इतनी तीव्र है, मनस वेगम, और मन का वेग इतना तीव्र है, और अन्यों में भूल देखने की, ढूंढने की, और उसके बारे में बोलने की प्रवृत्ति इतनी तीव्र है कि स्वाभाविक रूप से हम एक दूसरे से बात करते हुए किसी तीसरे व्यक्ति की निंदा तो करते ही करते हैं अवश्य, इतना हमारे स्वभाव का हिस्सा ये बन गया है कि इससे मुक्त होना आसान नहीं है। तो जो हंस हैं, जो वास्तव में साधु होते हैं, वो इस तरह से निंदा नहीं करना चाहते हैं। हाँ, दार्शनिक तत्वों की स्थापना करने के लिए, गलत कोई दर्शन के खंडन करने हेतु, भक्तों के भगवान की रक्षा करने हेतु कुछ ऐसे कटु वचन कभी बोले जाएं तो वो अलग बात है। तो खैर, ऐसे जो हंस होते हैं, न यत्र हंसा, ऐसे साधु जो हैं, ऐसे भक्त भगवान के, वो ऐसे वायस तीर्थ में रमण नहीं करते हैं। तो क्या करते हैं? निरमंती, वो रमण करते हैं। किस चीज में रमण करते हैं? ऐसे वायस तीर्थ में नहीं। क्यों नहीं रमण करते? उशिक्षया, क्योंकि वो भगवान के धाम के निवासी हैं। पृथ्वी लोक पे उनका शरीर होने के बाद भी वो भगवत धाम के निवासी हैं। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम भी बने उशिक्षया। पृथ्वी लोक पर रहते हुए भी, बंबई शहर के हलचल के बीच में भी रहते हुए भी, हम भगवत धाम के निवासी बन जाएं। इसके लिए सत्संग की बहुत आवश्यकता है। तो खैर, इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन करते हैं कि कैसे उद्धव जी, जो भगवत भावना में रत थे, मग्न थे, अब विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पृथ्वी लोक पर अपनी चेतना को लेकर आए। यहां तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु ने सिखलाए हुए एक दृष्टांत को बतला रहे हैं, भक्ति लता बीज का, कि जब कोई व्यक्ति भाग्यवान हो जाता है तो उसे किसी एक गुरु के द्वारा भक्ति लता का बीज मिलता है। गुरु प्रसादे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमते कन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि कोटि कोटि जन्म, कोटि कोटि योनियों में भ्रमण कर करके विरला ही कोई ऐसे एक भाग्यवान जीव होता है जिसको ऐसे कोई गुरु मिल जाते हैं, गुरुजन मिल जाते हैं, ऐसे भक्तों का संग मिलता है जिसमें उसे भगवान कृष्ण की भक्ति का बीज मिल जाता है। और फिर जब उसको भक्ति लता बीज का रोपण उसके हृदय में होता है तो फिर सिंचन करना पड़ता है। तो सिंचन इस बीज का कैसे किया जाता है? भक्तों के संग में आकर भगवान की बातें सुनना, बोलना, नाम संकीर्तन करना, भगवान का दर्शन करना, सेवा करना भगवान के विविध प्रकार से। तो ये सब सिंचन, इन सारी सिंचाई की पद्धतियों से फिर वो आगे बीज खिल जाता है, अंकुरित होकर फिर पौधा बन जाता है और आगे बढ़ते 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 भौतिक ब्रह्मांड को पार करके भगवान के धाम में श्री कृष्ण के चरण कमलों में आके आश्रित होता है और वहां पे कृष्ण प्रेम का फल प्रदान करता है। जो व्यक्ति यहाँ पे है भौतिक जगत में, पृथ्वी लोक पर, भले बंबई जैसे शहर में क्यों ना हो, परंतु उसकी जो भक्ति लता है उसके हृदय से बढ़ के गोलोक वृंदावन जा पहुंची है, इसलिए उस कृष्ण प्रेम का आस्वादन वो वहीं यहां बैठ के कर सकता है। गोलोक वृंदावन के प्रेम का आस्वादन यह बंबई में किया जा सकता है। ऐसे बहुत सुंदर बात श्रील प्रभुपाद जी यहां पे तात्पर्य में बता रहे हैं। फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी बात करना शुरू करते हैं। उद्धव उवाच, कृष्ण द्युमणि निम्लोचे गीर्णेश्व अजगरेण किं नु नः कुशलं ब्रूयाम गत श्री सुगृहेश्वहम्। पहली बार अब उद्धव जी बात करना शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं? कृष्ण द्युमणि निम्लोचे, निम्लोचे अर्थात अस्त हो चुका है, द्युमणि अर्थात सूर्य। तो कृष्ण सूर्य अस्त हो चुका है, कहने का तात्पर्य है वो कि श्री कृष्ण का तिरुभाव हो चुका है, वो स्वधाम लौट गए हैं, अभी पृथ्वी लोक पर प्रकट रूप में नहीं है, उनकी प्रकट लीलाएं समाप्त कर दी हैं उन्होंने, और अब हम उनको देख नहीं पाएंगे यहां पर इस भौतिक इस पृथ्वी लोक के ऊपर। गीर्णेषु अजगरेणः, और हम सब ऐसे विरह के अजगर से या काल के अजगर से निगले जा रहे हैं। अजगर एक बहुत बड़ा सांप होता है जो एक सारे आदमी को भी निगल सकता है, उसका मुंह इतना बड़ा होता है। तो ऐसे ये काल रूपी अजगर ने या विरह रूपी अजगर ने हम सबको निगल लिया है, तो किन्नु न कुशलम ब्रूयान, तो हम सब यदुवंशी हों या कुरुवंशी हों, हम सब के कल्याण के बारे में मैं क्या कहूं। गत श्रीषु गृहेश्वहम, तो अभी उद्धव जी कहते हैं कि अब कहने के लिए क्या रह गया है, जब हमारे प्राण धन श्री कृष्ण ही नहीं रहे हमारे बीच में। यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत ही सुंदर तात्पर्य दिया है, और इसी को दोहराया है श्रील प्रभुपाद जी ने उनके तात्पर्य में। कृपया इस तात्पर्य को और इस दृष्टांत को ध्यान से सुनिए, विशेष रूप से ये बहुत सरल उपमा है, श्री कृष्ण की तुलना सूर्य से की गई है, बस इतनी छोटी सी तुलना है, परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना है, और इस एक तुलना के माध्यम से अनेक तात्विक बातें प्रकाशित होती हैं, उनका स्पष्टीकरण होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पे कि जब विदुर जी ने सुना कि कुरुवंशी और यदुवंशी अब नहीं रहे, तो उनके हृदय में बहुत ज्यादा दुख हुआ, और जब विदुर से वो मिले, उद्धव से वो मिले, उद्धव जी तो अपने आप में वो भी दुखी थे, लेकिन विदुर जी के दुख को भी जान पाए, तो विदुर जी को सांत्वना देना चाहते थे वो, और कहने लगे कि अब और क्या कहना है, श्री कृष्ण जब नहीं रहे हमारे बीच में, तो हमारा हम सबका कल्याण कैसे हो सकता है, हम सब सुखी कैसे हो सकते हैं। और जहां तक श्री कृष्ण और सूर्य की तुलना है, प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि प्रातः काल में सूर्य का उदय होता है, सायंकाल में सूर्यास्त होता है, और अपने आप ही जैसे ही सूरज का उदय होता है रोशनी आती है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो अंधकार हो जाता है, परंतु सूर्य को अंधकार से कुछ लेना देना नहीं है, अपने स्थान में सूर्य सदैव रोशनी प्रदान करता है, परंतु हमारे स्थान के हिसाब से कभी हमें लगता है कि रोशनी है, कभी लगता है कि अंधकार है, परंतु इसका संबंध सूर्य से नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण का प्राकट्य इस भौतिक जगत में और उनका अप्राकट्य इस भौतिक जगत से सूर्य के उदय और अस्त होने के समान है। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय के पहले सूर्य का अस्तित्व नहीं है, नहीं था, या सूर्यास्त के बाद उसका अस्तित्व नहीं होगा, सूर्य अपने स्थान में है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं सूर्य के समान, केवल हमारे दृष्टि के सामने वह प्रकट हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए रहते हैं, जिस प्रकार से सूरज ऊपर ऊपर चलता है आसमान से मध्यान तक पहुंच के फिर से उतरने लगता है और फिर अस्त हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, जैसे कि वह मथुरा में हुए, मथुरा से वृंदावन गए, वृंदावन में लगभग 10.5 वर्ष उन्होंने लीला किए, मथुरा गए लगभग 18 वर्ष वहां पर रहे, फिर वहां से जाकर और द्वारका में गए, 125 के आयु तक लगभग वहां पर रहे, बीच में यहां वहां भी गए, हस्तिनापुर गए, कुरुक्षेत्र गए, मिथिला गए। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपने अपने लीलाओं को प्रदर्शित किया और जब समय हुआ तिरुभाव के लिए तो चले गए स्वधाम। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं किसी एक ब्रह्मांड में होती हैं। जब श्री कृष्ण उस ब्रह्मांड में प्रकट हो जाते हैं तो उस ब्रह्मांड के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश का निर्माण होता है, श्री कृष्ण प्रकाश। और जब श्री कृष्ण का तिरुभाव होता है तो उस समय अंधकार हो जाता है, आध्यात्मिक अंधकार। परंतु जैसे हम दो दिन पहले चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्ण इस श्रीमद् भागवत को छोड़ गए हैं हम सबके लिए। पुराण अर्को धुनो उदितः, पुराण अर्क अधुन उदितः। तो कृष्ण रूपी सूर्य तो चले गए परंतु इस भागवत रूपी सूर्य को छोड़कर गए हैं, और इस भागवत में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो जब हम श्रीमद् भागवत को पढ़ते हैं तो हम श्री कृष्ण के सानिध्य को प्राप्त करते हैं। तो खैर, इस ब्रह्मांड में से जब श्री कृष्ण अप्रकट हो जाते हैं तो इस भौतिक सृष्टि के किसी दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि इस भौतिक सृष्टि में अनगिनत ब्रह्मांड हैं, और इन अनगिनत ब्रह्मांडों में से हमारा ब्रह्मांड जो है एक है, वो भी साधारण एक ब्रह्मांड है, कोई विशेष ब्रह्मांड नहीं है, मध्यम वर्गीय ब्रह्मांड है। हमारे ब्रह्मांड से भी बढ़ के और बहुत बड़े ब्रह्मांड अनेक हैं इस भौतिक सृष्टि में। तो हमारे ब्रह्मांड से जब भगवान प्रकट हो जाते हैं तो दूसरे ब्रह्मांड में प्रकट होते हैं, वहां लीलाएं करते हैं, फिर वहां से अप्रकट हो जाते हैं, तीसरे ब्रह्मांड में प्रकट हो जाते हैं, फिर वहां से अप्रकट हो जाते हैं, चौथे ब्रह्मांड में पहुंचते हैं। इस तरह से एक के बाद एक के बाद एक जितने भी सारे भौतिक ब्रह्मांड हैं इस भौतिक सृष्टि में, इन सब में उनकी लीलाएं चलती रहती हैं। सूर्योदय सूर्यास्त, कृष्ण का आविर्भाव, उनका उनके प्रकट लीलाएं, फिर उनका अप्रकट होना, ये हर एक ब्रह्मांड में चलता है। अब और विस्तार में समझाने का प्रयास करें। जैसे समझ लीजिए कि अभी श्री कृष्ण का आविर्भाव या जन्म हो रहा है इस ब्रह्मांड में, मथुरा में माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण प्रकट हो रहे हैं। जैसे ही उनके जन्म की लीला यहां समाप्त होती है और दूसरी लीला यहां प्रारंभ होती है, वैसे ही दूसरे ब्रह्मांड में उनकी जन्म की लीला होती है। जैसे ही दूसरे वहां ब्रह्मांड में जन्म की लीला समाप्त हो जाती है, फिर तीसरे ब्रह्मांड में जन्म की लीला शुरू करते हैं। उधर पहले ब्रह्मांड में उनकी लीला के क्रम से काफी आगे वो बढ़ गए हैं। ऐसे यदि आप संपूर्ण भौतिक सृष्टि का एक चित्र निकाल सकते, संभव तो नहीं है, परंतु कल्पना कीजिए कि यदि ऐसे संभव होता कि दूर से आपने चित्र ले लिया, हर एक ब्रह्मांड के भीतर क्या हो रहा है यदि आप देख पाते हैं, तो आप क्या देखते? बहुत सारे ग्रह लोक आदि हर एक ब्रह्मांड के भीतर हैं, और हर एक ब्रह्मांड में पृथ्वी लोक के ऊपर वृंदावन धाम प्रकट है, और हर एक ब्रह्मांड के पृथ्वी लोक में कोई न कोई कृष्ण लीला चल रही है, अलग अलग लीलाएं चल रही हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सिनेमा चला रहे हैं, एक ही सिनेमा है यहां, अब इसको चालू कर दिया, सिनेमा शुरू हो गया, दो मिनट बाद वही उसी सिनेमा को दूसरी जगह चला दिया, दो मिनट बाद में उसी सिनेमा को तीसरी जगह चला दिया, ऐसे दो 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 मिनट के अंतर पे अनेक जगह पे उसी सिनेमा को हमने चला दिया, तो क्या हो रहा होगा? वही सिनेमा जो है अनेक जगह दिखाई पड़ रहा है, परंतु सिनेमा में जो प्रसंग चल रहा है वो हर एक जगह में अलग अलग होगा। ठीक उसी प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाएं जो है वो हर एक ब्रह्मांड में चल रही है, संपूर्ण भौतिक सृष्टि में चल रही है। परंतु हर एक ब्रह्मांड में जब भगवान लीला करते हैं, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे करते करते लगभग पृथ्वी के गणना के अनुसार 125 वर्षों का की प्रकट लीला करते हैं, फिर अप्रकट हो जाते हैं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक सृष्टि में भी नित्य हैं। आध्यात्मिक जगत में, उनके धाम में उनकी लीलाएं तो नित्य हैं ही, परंतु इस भौतिक सृष्टि में भी उनकी लीलाएं नित्य कहलाती हैं। इस बात को विस्तार से श्रील प्रभुपाद जी यहां समझा रहे हैं। मन को चकाचौंध कराने वाली बातें हैं। ये महत्व है भागवत को पढ़ने का और तात्पर्यों को समझने का। श्रील प्रभुपाद जी आगे ये भी बताते हैं, उस तुलना को आगे बढ़ा रहे हैं और विस्तार में समझा रहे हैं कृष्ण और सूर्य की उपमा को। जिस प्रकार से 24 घंटे में एक बार सूर्योदय होता है, एक बार सूर्यास्त होता है, क्रम से चलता है ये भगवान का प्रकट होना या अप्रकट होना, सूर्य का प्रकट होना अप्रकट होना, ठीक उसी प्रकार से भगवान की लीलाएं भी ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के एक दिवस में एक बार प्रकट होते हैं, लीला करते हैं, अप्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता है, उनके जीवन की अवधि बहुत लंबी है। संक्षेप में कुछ गणित आपको बताएं, ये कलयुग चल रहा है, कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। इसके पहले था द्वापर युग, द्वापर युग की अवधि है कलयुग से दोगुना, त्रेता है कलयुग से 3 गुना ज्यादा, सत्ययुग है कलयुग से 4 गुना ज्यादा। तो 4 युगों को जब मिलाया जाता है, इसे एक चतुर्युग कहते हैं। तो एक चतुर्युग की अवधि एक कलयुग के 10 गुना है। तो 4,32,000 वर्ष, इसका मतलब है कि लगभग एक चतुर्युग 43,00,000 वर्षों की है। तो ऐसे जब एक चतुर्युग को 1,000 बार दोहराया जाता है, तो यह ब्रह्मा जी का एक दिवस है। ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं। उसी तरह से ब्रह्मा जी की एक रात्रि है जिसमें सृष्टि का विनाश होता है, और फिर से ब्रह्मा जी का दिवस प्रारंभ होता है, सृष्टि का सृजन पुनः होता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के एक दिवस में, जो कि हमारे पृथ्वी लोक की गणना से 432 करोड़ साल की है लगभग, और इसकी पुष्टि वास्तव में भगवद गीता में की जाती है, परंतु इस विषय में गहराई में नहीं जाएंगे समय की कमी के कारण। तो समझ लीजिए कि भगवान श्री, जिस प्रकार से सूर्य 24 घंटे में एक बार यहां प्रकट होता है हमारे लिए, भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं किसी एक ब्रह्मांड में 432 करोड़ साल बाद। हर 432 करोड़ उसके बाद फिर ब्रह्मा जी की रात्रि है, उसके बाद फिर जब ब्रह्मा जी का दिवस शुरू हो जाता है, फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। और आगे प्रभुपाद जी तुलना को बढ़ा रहे हैं और कहते हैं कि जैसे ही सूर्यास्त होने पर जो सांप हैं वो शक्तिशाली होने लगते हैं, चोर प्रोत्साहित हो जाते हैं, साहसी हो जाते हैं, और जो भूत हैं वो भी क्रियाशील हो जाते हैं, और साथ साथ में जो कमल पुष्प है वो मुरझा जाता है, और चक्रवाकी पक्षी है जो है वो शोक करने लगता है। ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के आविर्भाव के समय सारे भक्त जो हैं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और जो नास्तिक लोग हैं दुखी हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के तिरुभाव के समय भक्त लोग उदास हो जाते हैं और नास्तिक लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो खैर, ऐसी व्याख्या श्रील प्रभुपाद जी यहां इस श्लोक के बारे में कर रहे हैं। और फिर उद्धव जी कहते हैं, दुर्भगो बदलोको यम
यदवो नितरामपि ये संवसंतो न विदुः हरिं मीना इवो रूपम्। वो कहते हैं दुर्भगो बत लोको यम, लोकः अयम, ये जो लोक है, ये संपूर्ण विश्व है, बत निश्चय ही दुर्भगः, बहुत ही दुर्भाग्यशाली है। साथ साथ में यदवो नितराम अपि, केवल सारा विश्व ही दुर्भाग्यशाली नहीं है, सारे दुर्भाग्यशाली विश्व में सबसे अधिक दुर्भाग्यशाली हैं यदवः, यदुवंश। क्यों ऐसे? ये संवसंतो न विदुः हरिम्। संवसंतः अर्थात वस, वस धातु अर्थात रहना, जैसे निवास वास आदि होता है। संवसंतः मतलब यदुवंशी भगवान श्री हरि या श्री कृष्ण के साथ में रहते थे, परंतु उनको सही तरह से पहचान नहीं पाए। कैसे नहीं पहचान पाए? मीना इव उडुपम, उडुप, उडुपी का नाम सुना है ना आपने, उडुपी, उडुपम, उडुपम अर्थात चंद्र, मीना, मीनाह, मीन अर्थात मछली। जिस प्रकार से मछली भी चंद्र को एक मछली समझने लगे, साधारण समझने लगे। ये प्रसंग ऐसे है कि जब वास्तव में कहा जाता है कि चंद्र का जन्म या उदय क्षीर सागर से होता है, दूध का भी एक सागर है जिसे क्षीर सागर कहते हैं, जिसमें भगवान क्षीरोदकशायी विष्णु निवास करते हैं, और वही क्षीरोदकशायी विष्णु फिर प्रत्येक हृदय के प्राणी में विराजमान होते हैं परमात्मा के रूप में, हर एक अणु के अंदर भी वो प्रवेश करते हैं। तो चंद्र का जन्म इस क्षीर सागर से हुआ, ऐसा एक क्षीर सागर भी है। तो प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि हमें जानना चाहिए कि ऐसे क्षीर सागर है, ये कोई काल्पनिक बातें नहीं है, शास्त्रोक्त बातें हैं, इसलिए इन पे भरोसा करना चाहिए। वो आयुर्वेद शास्त्र से उदाहरण देते हैं कि वो कहते हैं कि इस विश्व को कभी कभी गो कहा जाता है, गो अर्थात गौ। अभी गाय के मूत्र से, गौमूत्र से अनेक बीमारियां ठीक हो सकती हैं, विशेष रूप से कलेजे की जो बीमारियां हैं वो ठीक हो सकती हैं। इसका नमकीन स्वाद होता है थोड़ा बहुत इस गौमूत्र का। तो ऐसे जो कलेजे के मरीज होते हैं उनको कभी दूध पिलाया नहीं जाता, परंतु उनको जानना चाहिए कि दूध एक ऐसी वस्तु है, ऐसे नहीं कि वो दूध नहीं पी सकते, उनको कोई बीमारी है इसलिए दूध है ही नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से हमें यहां अनुभव है एक ऐसे सागर का जिसका जल नमकीन है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि दूध का सागर कहीं है नहीं, है अवश्य। तो ऐसे दूध के सागर से प्रकट हुआ चंद्र। अब जब चंद्र प्रकट हुआ तो वहां के जितने भी मछलियां थीं उन्होंने क्या सोचा, ये भी हमारे जैसे कोई मछली है। ये मछली नहीं समझ पाए कि ये मछली नहीं है, ये चांद है, चांद बहुत विशेष है। तो इसलिए यहां कहा गया मीना इव उडुपम, कि जिस तरह से निकटता के कारण मछलियों ने, क्षीर सागर में स्थित तैरने वाले मछलियों ने चंद्र को भी साधारण उन्हीं की तरह एक मछली समझा, तो यदुवंशियों ने श्री कृष्ण को अपना मानकर एक साधारण व्यक्ति समझा, ये भी चलो यदुवंशी ही हैं। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बतलाते हैं कि यद्यपि यदुवंशी राजकुमार आदि सब जानते थे कि श्री कृष्ण हृदय में स्थित परमात्मा है, सबके हृदय में है, परंतु वो अंततः परम सत्य भगवान श्री कृष्ण है वृंदावन के, इस बात को वो नहीं जानते थे। और ऐसे भी होता है ना जगत में, अति परिचयात अवज्ञा,
अति परिचय जब किसी के साथ होने लगता है तब उसको हम साधारण मानने लगते हैं। ये अनुभव हम सबका है इस जगत में। इसलिए बताया जाता है कि जो बहुत ही सम्माननीय व्यक्ति होते हैं या वस्तु होते हैं उनके बहुत निकट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारी वृत्ति ही है भौतिक जगत में रह के दोष देखने की। कलो दोष निधे राजन, तो सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि ये कलयुग विशेष रूप से दोषों की निधि है, दोषों का सागर है। जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां दोष ही दोष दिखाई पड़ते हैं। तो क्योंकि हमारी दृष्टि भी ऐसी है और समय भी ऐसा है, इसलिए सम्माननीय व्यक्ति और वस्तु आदि से संभल के हमें रहना चाहिए। इसलिए बताया जाता है कि जब भगवान के मंदिर में जाते हैं तो भगवान के श्री विग्रह के बहुत निकट नहीं जाना चाहिए। ये केवल जो सेवक होते हैं, जो पुजारी होते हैं, वही मात्र जाते हैं बहुत निकट, और पुजारियों को भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। अति परिचयात अवज्ञा, कि ऐसे न हो कि हम हर रोज भगवान की सेवा कर रहे हैं तो उनको साधारण समझें, ऐसे संभावना रहती है। इसलिए सारे भक्तों को बहुत सावधान रहना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे प्रत्येक मंदिर में भगवान के विग्रह से दर्शनार्थियों के बीच में काफी अंतर होता है, ताकि बहुत निकट ना आ पहुंचे भक्त, थोड़े दूर से भगवान का दर्शन करना अच्छा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर में जाया करते थे तो गरुड़ स्तंभ पे के पास में खड़े हो जाते थे, बहुत पीछे। सामने आके वहां पे सिंहासन के पास में नहीं रहते, गर्भगृह में नहीं जाते, वो दूर गरुड़ स्तंभ के पास रह के दर्शन करते, भाव विभोर हो जाते वहां पर। साथ साथ में वृंदावन धाम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम धाम में जाते हैं तो ज्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। यदि गुरु का आदेश है तो अलग बात है, अन्यथा हम जब धाम में जाते हैं तो थोड़े दिनों के लिए रह के वहां सेवा करके विनम्रता से रह के लौट के आना चाहिए। बहुत अधिक समय जब हम वहां रहते हैं धाम में, फिर से वही बात हो जाने लगती है, अति परिचयात अवज्ञा, अरे ये भी तो ऐसे ही दूसरे स्थानों के बराबर है, इसमें अंतर क्या है, देखो यहां भी भीड़ है, यहां भी कितनी आवाज है, यहां भी प्रदूषण है, कितना हल्ला गुल्ला यहां पे है, यहां भी लोग चलो दक्षिणा के लिए पीछे हाथ धो के पीछे पड़ते हैं, यहां भी चोरी डकैतियां होती हैं, तरह तरह के गलत काम भी होते हैं, तो ये कैसा धाम है। और बात जब हम बार बार किसी चीज को करने लगते हैं तो फिर वो साधारण सी बन जाती है। तो जब हम मंदिर में जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो सावधान रहना चाहिए। भगवान के विग्रह के सामने भी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारे विधि निषेधों का की पहचान रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में की है। जैसे भगवान के विग्रह के सामने आके हमें ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए, किसी को डांटना नहीं चाहिए, किसी को प्रति गुस्सा नहीं करना चाहिए, अपना बड़प्पन भगवान के सामने नहीं करना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, अच्छे वस्त्र सही वस्त्र पहन के आने चाहिए। बहुत सी चीजें हैं, किस तरह से भगवान के सामने बैठना चाहिए, नहीं बैठना चाहिए, पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए, घुटनों को ऐसे पकड़ के भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए, बहुत सी विधियां हैं। क्यों? ताकि मन में यह रहे कि हम किनके सामने बैठे हैं। अति परिचयात अविज्ञा, ये न हो, इसके लिए इन विधियों का उल्लेख है। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि रोज हम जाते हैं मंदिर में, अनेक घंटे मंदिर में रहते हैं, तो भगवान के सामने खड़े खड़े भी हम आपस में बातें करते रहते हैं, किसी से मिलते हैं, लंबी लंबी बातचीत भगवान के सामने होती रहती है, कभी मोबाइल फोन बजता है तो फोन उठाकर कोई बात करता है,
हमें कथा के समय तो फोन उठाना ही नहीं चाहिए, परंतु भगवान के सामने भी नहीं उठाना चाहिए। भगवान के सामने जब होते हैं तो मोबाइल फोन आप अंदर रख दीजिए, फिर बाहर मंदिर के बाहर यह सब देखा जा सकता है। उसी तरह से गुरु के प्रति भी बहुत करीब नहीं जाना चाहिए, दोष दिखने लगेंगे, फिर अपराध हो जाएगा, हानिकारक हो जाएगा। वैष्णवों के बीच में, भक्तों के बीच में जाते हैं, फिर अरे ये भक्त, इसकी इसकी वृत्ति ऐसी है, इसने ऐसे कहा, उसने ऐसे किया, तो फिर वो दोष दिखाई पड़ते हैं, फिर निंदात्मक वृत्ति निर्माण होती है हृदय में, हमारे भक्ति में बहुत बाधक ये सब बन जाते हैं। तो इसलिए हमें देखना चाहिए कि हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी भी इस बारे में काफी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि मुझे भारत छोड़ के अमेरिका जाना पड़ा। क्यों जाना पड़ा? क्योंकि यहां पे हर एक व्यक्ति भारत में सोचता है मैं कृष्ण को जानता हूं। हर एक व्यक्ति सोचता है आप क्या सिखाओगे मुझे, और विशेष रूप से जब विदेशी उनके शिष्य आ गए यहां पर, वो सोचने लगे भारतीय लोग कि हम तो भारत के हैं और ये विदेशी हमें क्या सिखाएंगे। परंतु वास्तव में अनेक भारतीय लोग ऐसे हैं जिनको भगवान के बारे में नहीं पता है, तत्वतः भगवत गीता क्या है वो नहीं पता है, फिर भी सोचते हैं, एक तरह का अहंकार है। ब्रह्मा जी श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद के 14वें अध्याय में एक श्लोक कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते समय ब्रह्मा जी कहते हैं, जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्यन मे प्रभो मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरा। वो कहते हैं कि हे कृष्ण, ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं मैं कृष्ण को जानता हूं, जानंत है। ब्रह्मा जी कहते हैं जानंतो, जानने दो उनको, कहने दो। ऐसे लोग जो इतने सस्ते लेते हैं श्री कृष्ण को जानने के विषय को, कहते हैं हाँ हाँ हमें कृष्ण पता है कौन है, या हमने भगवद गीता पढ़ी हुई है, कहने दो, ऐसे लोगों को ब्रह्मा जी कहते हैं। और ये कौन कह रहे हैं? सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, सबसे पहले ब्राह्मण, सारे ब्रह्मांड के आदि गुरु हैं इस ब्रह्मांड के। वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, कहने दीजिए उनको ऐसे है कृष्ण, हम ऐसे लोगों की परवाह नहीं करते हैं। जहां तक हमारी बात है, मनस मेरे मन से, वपुषो मेरे शरीर से, वाचा मेरे वचनों से, मैं आपके गुणों के अंत तक नहीं पहुंच सकता। आपके गुणों को समझना और आपकी सेवा पूर्णतया करना मेरे बस की बात नहीं है। तो श्री कृष्ण को जानना इतना आसान नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहने लगे कि मुझे भारत छोड़ के वहां जाना पड़ा। यहां इतना उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया, इतना कष्ट उठाया उन्होंने, कितने वर्षों तक एक शिष्य उनके बने, लेकिन जब वहां गए अमेरिका तो देखिए केवल 12 वर्षों में उन्होंने क्या चमत्कार कर दिया सारे विश्व भर में। बुढ़ापे में उस समय 70 वर्ष की आयु पे वो भारत छोड़ के चले गए, और 12 वर्षों में क्या कर दिया उन्होंने चमत्कार। और विशेष रूप से तरुण पीढ़ी वहां की थी जो कि उनके प्रति आकर्षित हुई, और फिर वो सारे भक्त गए, भक्त बन गए, शरणागत हुए। और फिर वो जब यहां पर आए, सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, सभी लोग सोचने लगे अरे विदेशी लोग इसको मान रहे हैं तो कुछ अच्छा होगा हमारे यहां भी, कुछ अच्छा हमें भी सीखना चाहिए, है ना। तो भाग्य की बात है, ऐसे भी भावना कभी कभी आज भी होती है। विदेश से ही जब सब लोग मानेंगे कि भाई आपकी संस्कृति कितनी अच्छी है, आपके ग्रंथ कितने अच्छे हैं, तब हम मानना शुरू करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अति परिचयात अवज्ञा। भारत में रह के हम इसे बहुत साधारण समझते हैं, हम तो बचपन से सुनते आए हैं ना, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जो लोग अमेरिका जाते हैं भारतीय लोग वहां जाके बस जाते हैं, प्रभुपाद जी कहने लगे कि जब हमारे भक्त जाके उनसे मिलते हैं तो वो उतने रुचि नहीं रखते, वो यही बात कहते हैं, हाँ हाँ हम तो कृष्ण को जानते हैं, हम यहाँ कंप्यूटर के लिए आए हैं और पैसे कमाने के लिए आए हैं, ये हमारी रुचि यहाँ पर है, हम यहाँ के लोगों की तरह खाने पीने के लिए आए हैं। ऐसे अनेक उदाहरण श्रील प्रभुपाद जी देते हैं। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी एक हास्यपद एक घटना बताते हैं, काल्पनिक है, ऐसी कहानी जैसी है कि थोड़े बच्चे थे, आपस में खेलते फिरते थे, उसी इलाके में रहते थे, फिर बच्चे बड़े हो गए, उनमें से एक बच्चा जो है वो आ गए, सब बिखर गए अपने अपने जगह में, कोई पढ़ाई के लिए यहाँ गया, कोई वहां गया, तो उनमें से एक बच्चा बड़े होकर एक न्यायाधीश बन गया। तो गांव में रहने वाले जो बच्चे थे दो चार, अब वो तो बड़े हो गए थे, तो एक मित्र ने दूसरे से पूछा, ये पंचू नाम का हमारा मित्र है, हमने सुना है कि वो न्यायाधीश हो गया है। न्यायाधीश पंचू? अरे वो तो हमारे सामने निर्वस्त्र घूमता था, बच्चे की हम लोग खेलते थे, वो कैसे न्यायाधीश हो गया? हाँ हाँ मैंने सुना है, अधिकृत स्थान से सुना है कि वो न्यायाधीश हो गया है। अरे हुआ होगा लेकिन तनख्वाह नहीं मिलती होगी उसको। मतलब ईर्ष्या, ईर्ष्या। अरे हम हमारे साथ खेलता फिरता था, वो कैसे न्यायाधीश हो गया? तो अति परिचयाद अवज्ञा। इसी तरह से हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि भगवान के प्रति, ऐसे भगवान के प्रति और भगवान के संबंधित जितने भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं आदि, उनसे हमें ऐसे सावधानी से रहना चाहिए ताकि हमारे भक्ति में कोई बाधा न हो। तो ऐसे कहने के लिए तो बातें और बहुत हैं। श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के आठवें श्लोक की चर्चा तक हम पहुंचे हैं। उद्धव और विदुर जी का संवाद चौथे अध्याय के अंत तक है, परंतु अब ये अंतिम दिन है और कथा नहीं जारी रखेंगे। आधा लगभग हम सत्संग का लाभ उठाएंगे और कृष्ण भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ते रहेंगे। आपको याद होगा कि ये कथा का आयोजन भाद्र पूर्णिमा के महोत्सव के उपलक्ष्य में किया गया है। कल ही वो दिवस है, पूर्णिमा का दिन है, जहाँ पर भागवत वितरण करके, भागवत अन्यों को भेंट देके हम भक्ति मार्ग में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य हो सकते हैं। तो इसका फायदा अवश्य आप सब उठाइएगा। तो श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर के भक्तों को और यहाँ के व्यवस्थापन को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और जितने भी भक्त जुड़े थे इस कथा के आयोजन में, प्रसाद बनाने में या अन्य व्यवस्था करने में, आप सबको हार्दिक धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छी व्यवस्था यहाँ की है, जिससे देखिए कितने यहाँ भक्तों को कृष्ण कथा सुनने करने का लाभ मिल गया है। तो आप सबको हार्दिक धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की।